الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر الله ذكرا كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة لكم إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. وقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن ديني يسر، ولن يشاد الذين أحد إلا غلبوا، فسددوا وقاربوا وأبشر واستعين بالغدوة والروحة وشيء من الضلجة. وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقره فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قره من الليل. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول اللہ کریم. معزز خواتین و حضرات، اللہ اکبر. اللہ پاک نے بہت آسان آسان چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے، وہ جو لمبی زندگی آ رہی ہے اس کے لیے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں. لیکن ہوا کیا؟ وہ یہ کہ ہم لوگ اس کو بھول گئے اور اپنے نفس کے خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گئے. نتیجتاً وہ اہم مواقع ہم سے تیزی کے ساتھ مس ہو رہے ہیں اور ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کے معاملے میں ہمارا رویہ ایسا ہو. جب ہمیں اپنے کاروبار میں نفع کا احساس ہوتا ہے تو تاجر جو ہے وہ تکتا نہیں ہے. جس کا سودا بکتا ہو، کیا وہ تاجر کہتا ہے جی میں بہت زیادہ تک گیا ہوں اور جناب مزید سودا نہیں دے سکتا؟ کبھی وہ کہتا ہے؟ ہاں جی، بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ اور بھی رش ہو، اور بھی رش ہو، اور بھی رش ہو، کیونکہ اس کو سمجھ ہے کہ اس کے ذریعے سے میں بہت زیادہ کما رہا ہوں. تو اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے زندگی کے لیے ضروری ہیں، جس کے بغیر زندگی گویا کہ نہیں چل سکتی. اتنا کھانا، اتنا پینا، اتنا سونا، یہ ہماری زندگی کی ضروریات ہیں. اس کے بغیر ہماری زندگی چل ہی نہیں سکتی. اس کو پورا کرنا یہ ایسا ہے جیسے فرائض قوت لا یموت اس کو کہتے ہیں. اور اس حالت پر جب انسان پہنچ جاتا ہے تو پھر حرام کھانے کی بھی اجازت ہو جاتی ہے. جیسے انسان فاقے پہ فاقے کر رہا ہے اور مر رہا ہے، تو چونکہ اپنے جان کو بچانا ہے لہذا یہ چونکہ مطلب جانا وہ ضروری ہے، لہذا اس کے لیے اس کو تھوڑا سا حرام کھانے کی بھی جات ہوتی ہے کہ اپنی زندگی کو بچا سکے. تو یہ جو قوت لا یموت والی چیزیں ہیں، اگر صرف کسی کو یہی دے دی جائیں دنیا میں اور باقی چیزیں ان کو نہ ملیں، تو کیا خیال ہے اس کے لیے؟ وہ کیا کہے گا، کیا کرے گا؟ خوش ہو جائے گا؟ ہاں جی، بلکہ بہت زیادہ چاہے گا کہ مجھے میرے مرضی کی چیزیں بھی مل جائیں، یعنی کچھ میٹھا بھی مل جائے، سیر ہو کر کھا لوں، اور مطلب یہ ہے کہ فلاں چیز بھی ہو، فلاں چیز بھی ہو، فلاں چیز بھی ہو، اس کے نخرے ختم نہیں ہوتے. ہاں جی، تو اسی طریقے سے نوافل کا تعلق ہے، یہ اضافہ ہے. جیسے وہ اضافہ ہے نا، عبادات میں اضافہ ہے، یعنی قوت لا یموت سے زیادہ آپ کو یعنی اگر ملے تو وہ آپ کے لیے ایک قسم کی اضافے کی چیز ہے. तो नफल कहते इजाफे को। तो इसी तरीके से आप जब नवाफिल पढ़ते हैं तो ये आप माशाल्लाह जन्नत के मर्तबों को चाह रहे हैं, आप वहाँ पर गोए के ज़्यादा बेहतरी को चाहते हैं। अब यहाँ पर तो मशक्क़त है, यहाँ कोई कह दे जो ये बिल्कुल उसका किसके साथ क्या मुकाबला है, वहाँ तो मज़े हैं और यहाँ पर मशक्क़त में आप डाल रहे हैं, ये कैसी बात हो सकती है। तो उस वक़्त हम अर्ज़ करेंगे कि आखिरत के मज़े आखिरत में होते हैं और दुनिया के मज़े दुनिया में होते हैं। तो अब आप दुनिया के मज़े जिस तरह चाहते हैं इजाफा है, और आप उन इजाफी चीज़ों को चाहते हैं, इस तरह आप आखिरत के मज़ों का इजाफा नहीं चाहते। तो जो आखिरत के इजाफों का मज़ा चाहेंगे तो नवाफिल है, वो नवाफिल के बगैर नहीं मिल सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्ब बिल फराइज़ इससे सबसे ज़्यादा मिलता है। सबसे ज़्यादा मिलने का मतलब क्या है मुझे बताओ, ज़िंदगी न रहे तो आपको क्या, ज़िंदगी न रहे तो आपको क्या मिल गया, वो तो आपको कुछ भी नहीं मिला। सबसे पहले तो ज़िंदगी है, तो ज़िंदगी आपके फ़राइज़ पर कड़ी है। तो कुर्ब बिल फराइज़ जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। हाँ जी, फिर उसके बाद जैसे 0 और 1 के दरमियान नस्बत है तो वो बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ के साथ जो नस्बत है उससे भी ज़्यादा है। करोड़ से चुकड़ों को छोड़े 1 का अरब के साथ जो नस्बत है उससे भी 0 का 1, 0 से 1 का नस्बत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से कुर्ब अल फराइज सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। लेकिन कुर्ब बिन नवाफिल पर इंसान की उड़ान है, उठान है। जिस वक्त इंसान नवाफिल के ज़रिए से तरक्की करता है तो इतना तरक्की करता है, इतना तरक्की करता है, इतना तरक्की करता है कि आप सब फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, और इस तरह जैसे मैं जुबान बन जाता हूँ जिससे वो बोलता है। ये सारी बातें नाफिल के जरिए से हैं। हजरत मौलाना श्रीमद गंगूई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तसव्वुफ का अव्वलीन कदम जो है वो ये है कि इंसान मुस्तहबात की रियायत करने लगता है। पहले मुस्तहबात को कुछ नहीं समझता, थोड़ा सा देखे ना वो उलमा जो सूफी हैं और वो उलमा जो फी सूफी नहीं है, दोनों में फ़र्क आपको वाज नज़र आ जाएगा। हालांकि इल्म दोनों के हैं, ये भी उलमा है ये भी उलमा है, लेकिन जो सूफिया उलमा है वो नवाफिल का एहतमाम कर रहे होंगे, तहज्जुद का, इशराक का, चाश का, इनका एहतमाम कर रहे होंगे, और ये बाकी हज़रात बस वो जो नमाज फ़र्ज़ नमाज है सुन्नत मौक्कदा है बस इसी पे गुजारा करेंगे। बल्कि मुझे बाज़ लोगों ने कहा है, हाँ जी, तो उसकी वजह यह है कि उनका दिल इस तरह नहीं लगा हुआ जिस तरह दिल लगना चाहिए, इस वजह से मसाइल पैदा होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को नवाफिल का कुछ हिस्सा अपने पास रखना चाहिए। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा बंदा मेरा कुर नवाफिल के साथ हासिल करता रहता है यहाँ तक कि मैं उसको महबूब बना लेता हूँ। और क्या चाहिए, नवाफिल के अंदर जो ये सलाहियत है कि इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। इरशाद फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपने ऊपर रात के क़याम या तहज्जुद को लाजम पकड़ लो, क्योंकि वो तुमसे पहले नेक लोगों का तरीका चला आता है, वो तुमको तुम्हारे रब से करीब करने वाला है और गुनाहों को मिटाता है और बुरी बातों से रोकता है। तहज्जुद की नमाज ये सालिहीन की नमाज है, अवलिया की नमाज है, इसलिए हज़रात फरमाते हैं कि विलायत की कुंजी है। जिसको समझो कि तहज्जुद का तौफीक मिल गई तो इसका मतलब है अल्लाह ने उसके लिए विलायत का दरवाज़ा खोल लिया। अब वो आगे बढ़ेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको अपनी मंजिल तक पहुंचा देंगे। तो तहज्जुद जो है ये है तो नफल, लेकिन ये बहुत ऊंचे दर्जे का नफर है। जैसे रमज़ान शरीफ में रातों को और शब-ए-क़दर में जो पूरी रात मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक आवाज़ लगती है। हाँ जी, ये कोई मुझसे मांगने वाला हो, किस तरह वो इस तरह चलता रहता है। तो ये तहज्जुद में हर रोज सहरी के वक्त होता है, तहज्जुद के वक्त हर रोज सहरी के वक्त होता है कि मुसलसल आवाज आती है, यानी वो है कि हे कोई मुझसे मांगने वाले को उसको दूं, हे कोई परेशान हाल के उसको उसकी परेशान दूर करूं, हे कोई मुसीबत ज़दा के उसकी मुसीबतें दूर करूं। आजकल मसला ये है ना कि इन चीज़ों पे यकीन उठ गया है, इन चीज़ों से यकीन उठ गया है। लोगों को समझाया भी जाए फिर भी वो अगर समझ भी ले तो ऊपरे दिल से, चेहरे से अंदाजा होता है कि उनको बात समझ नहीं आई। इन्हें अगर किसी को बताया जाए तो चेहरे से ही पता चल जाता है कि वैसे ही बस वैसे हाँ कर ली, लेकिन वो हाँ हाँ नहीं है, वो दिल की हाँ नहीं है, वैसे बस जुबानी बात है, सती बात है। हाँ जी, तो ये जो बात है इसकी वजह से हम बहुत पीछे रह गए हैं, हमारा हाल बहुत पतला हो गया है। हालांकि ये तो वो मुबारक वक्त है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से अपने बेटों ने दरख्वास्त की कि हज़रत आप हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें माफ़ कर दें, क्योंकि बड़ा जुर्म हुआ था इन्हें, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो आज ही कुएं में गिराया था, या उनको कत्ल करने का इरादा जो किया था, बड़ा जुर्म था। तो उनने अपने वालिद से कहा कि आप हमें हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारे जुर्म को माफ़ कर दें। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन करीब मैं आपके लिए दुआ करूँगा। तो किताबों में लिखा है कि इससे मुराद तहज्जुद के वक़्त की दुआ थी कि तहज्जुद के वक़्त आपके लिए दुआ करूँगा। तो तहज्जुद का वक़्त कबूलियत ही दुआ का वक्त है। अल्लाह जल्ल शानू कर सकते हैं सब कुछ, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला पे कोई कानून लागू नहीं होता, लेकिन अल्लाह जल्ल शानू उमूमी तौर पर अपने बनाए हुए कवानीन का पास रखते हैं। हाँ जी, उसके मुताबिक चलते हैं, कभी कभी उसके अलावा भी करते हैं, जब अलावा करते हैं उसको खैर की आदत कहते हैं, वो गैर मामूली बात होती है, वो मामूल की बात नहीं होती। लेकिन ये वाली बात है कि जो मामूल की बात है वो तो जैसे अल्लाह पाक फरमाते इस तरह करते हैं, तो अब तहज्जुद के वक़्त का ये सिलसिला ये मामूल की बात है। हाँ जी, मामूल की बात है, तो इस वजह से इससे इस्तेफादा करना चाहिए। अब देखो जैसे खाना काबा कोई जाता है सवाल करता है, ये मामूल की बात है कि वहाँ दुआएं कबूल होती हैं, अरफात में दुआएं कबूल होती है, मामूल की बात है, शैतान बड़ा जलील होता है, ये मामूल की बात है, मुजलफा में इस तरह मुख्तलिफ मौके। तो यहाँ तजुद का तो रोजाना हर एक को मिलता है ना मौका। आप सब ने ये भी इरशाद फरमाया अफशु सलाम व अतइमु तआम व सिलुल अरहाम व सल्लु वन्नासु नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। सलाम को फैलाओ, खाना खिलाओ, सिल रहमी करो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो और सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। कितनी आसान बातें, कितनी आसान बातें हैं, लेकिन लेकिन यकीन की बात है ना, यकीन की ज़रूरत है। जब यकीन आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें करनी आसान, जैसे दुनिया पे हमारा यकीन है मुशाहदे है, तो उसके लिए वो काम करने आसान हो जाते हैं। अब ये मैं अब देखता हूँ कि मोटर मैकेनिक जो होता है वो गाड़ियों के नीचे पड़ा होता है, मोबलेल भी उस पर आता है, तेल भी उस पर आता है, हाथ भी उसके काले, चेहरे भी उसके काले, कपड़े भी उसके ख़राब, लेकिन अगर आप किसी उसको कह दे के जाए यार साफ सुथरे रहे, ये क्या आपने शुरू किया है, तो वो क्या कहेगा, वो मानेगा आपकी बात कि भाई हमें तो इसी से मजदूरी मिलती है। हाँ जी, और जिस दिन मजदूरी नहीं मिली तो कितने परेशान होता है। हाँ जी, तो ये जो बात है कि मतलब जब यकीन आ जाता है किस चीज़ पर तो अमल करना बड़ा आसान हो जाता है, और यकीन जब नहीं होता तो फिर बहाने बिस्यार, बस जी थकावट होती नहीं क्या करे जी, वो असल में बच्चे सोने नहीं देते ना, वो ये नहीं होता वो नहीं होता है। हाँ, तो बस ठीक है, बस फिर भुगते रहो, वक्त गुजरता जाएगा, आखिर में अफसोस ही करना पड़ेगा, क्या कर सकोगे। हाँ जी, तो ये जो बातें हैं मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि आजकल सूरत हाल ये है कि अगर कोई मुसीबत और तकलीफ है तो सबसे पहले तो आमिलों के पास भागता है, अल्लाह के पास नहीं भागता। फिर्रु इलल्लाह, कुरान में किस चीज़ का हुक्म है? अल्लाह की तरफ भागो। और ये किसकी तरफ भागते हैं? आमिल की तरफ भागते हैं। आमिल से क्या चाहते हैं? कोई तावीज़ दो। अब वो तावीज़ चाहे शिरकी अल्फाज का क्यों ना हो, चाहे उससे नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक काफिर क्यों ना हो जाए, ऐसे हैं तावीज़ें, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन बड़े अच्छे अच्छे खानदानों के लोग वो कर लेते हैं। क्यों? आखिरत की ज़िंदगी का वो नहीं है, एहसास नहीं है। आखिरत की तबाही दुनिया की एक छोटी चीज़ के लिए वो गवारा कर लेते हैं। तो सबसे पहले काम तो क्या होता है? आमिल की तरफ भागना। उसमें औरतें बहुत ज़्यादा आगे आगे होती हैं। औरतों का मामला इस सिलसिले में बहुत कमज़ोर है। ये पामिस्ट्री वालों के पास जाएंगे, हाथ दे कहेंगे जायचा बना दे, ये मुसलमानों की बातें बता रहा हूँ। मुझे टेलीफोन आता है, शाह साहब ये मसला है, वो मसला है, ये है, वो है। अभी मैंने कुछ बात नहीं की होती, क्यों? कहते जी मेरा नाम ये है, मेरे माँ का नाम ये है। मैंने कहा ना तुझे तेरा नाम चाहिए ना तेरे माँ का नाम चाहिए, मैं आमिल तो नहीं हूँ, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात मानोगी तो बताता हूँ। वो एक ताजुद के वक़्त अल्लाह ताला से मांगो और इस पर यकीन करो तो आपका मसला हल हो सकता है। तो मैं तो ये बता देता हूँ, तो उस वक़्त हाँ जी हाँ है, तो बस वो ऐसे टूटे हुए दिल से बात कर लेगी कि आदमी को जैसे तरस आ जाता है कि बस ये तो मर गई। हाँ जी, तो ये आजकल का रोज़मर्रा रोज़ाना का मामूल है, इस किस्म की बातें मैं सुनता हूँ। तो सबसे पहले तो भागते हैं किस तरफ? आमिल की तरफ। फिर आमिल अपना हिस्सा अदा कर लेते हैं, इनको लूट लेते हैं। फिर जब इनको अकल आ जाती है तो फिर हमारे जैसे लोगों के पास आती है जी, कोई दम बताओ, कोई चीज़ बताओ, कोई गुर बताओ। अब हम कहते हैं कि आप ताजुद का नमाज पढ़े, तो ये बात फिर भी उनको समझ में नहीं आती। हाँ जी, हालांकि सबसे पहले यही चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब कोई तकलीफ आती मस्जिद की तरफ तशरीफ ले जाते, साहबा किराम का भी काम था कि जब कोई तकलीफ आती तो मस्जिद की तरफ भागते, आंधी आती या कोई और तकलीफ आती तो जाना मस्जिद की तरफ होता था। यही जगह बचने की है, हाँ, अपने आप को बचाने की यही जगह है। तो खैर बहरहाल ये है कि दूसरे नंबर पर समझते हैं लोग किस चीज़ को कि दम वगैरह कोई कर ले। तीसरे नंबर पर वजीफ़ा कोई दे दे। सही बात मैं अर्ज़ करता हूँ कि वजीफ़ा के लिए भी लोग आसानी से तैयार नहीं होते, वजीफ़ा के लिए भी आसानी से तैयार नहीं होते। चाहिए उनको पहले स्टेज पर तावीज़ चाहिए, क्योंकि उसमें ज़िम्मेदारी कुछ भी नहीं, बस पैसे मैंने दे दिए और तावीज़ गले में लटका दिया या हाथ में बांध लिया, बस मुझे तो अब कुछ नहीं करना, इस पर बड़े खुश होते हैं। और दम में भी खुद तो कुछ नहीं करना होता, जिसने दम करना है उसी ने करना होता है ना, बस फिर अफारे हो गए। तो इसलिए दो चीज़ों के लिए तो बिल्कुल जोली पिलाए होते हैं। तीसरी चीज़ क्या है? वजीफ़ा। इसके लिए बड़े मुश्किल से तैयार होते हैं, लेकिन इसके बाद फिर इसके लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे पास यहीं इलाहाबाद का एक आदमी खैबान में जब हमते आया तो मैंने उसको एक वजीफ़ा बताया, अपने मसाइल उसने बताए, तो मैंने उनको वजीफ़ा बताया तो मुझे कहते हैं कमाल है, जिसके पास मैं जाता हूँ वो कुछ पढ़ने को बताते खुद कुछ नहीं करते। मैंने कहा जाओ, मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, तूने मुझे क्या समझा है कि मैं सब लोगों के लिए वजीफे करूँगा? जाओ निकल जाओ यहाँ से, मैं कुछ भी नहीं देता तुझे। यानी यह यहाँ तक माहौल की बात आ गई कि वजीफ़ा दूसरा कर ले हमारे लिए, तो फिर भुगतो जितने भुगतते हो भुगत जाओ, ऐसे लोगों के पास जाओ जो तुम्हें लूटे। तो तीन बातें हो गई। चौथी बात इसके बाद है कि नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांग लेंगे, कर लेंगे। ये उन लोगों में है जो निस्बतन काफी बेहतर है। और अगर तहज्जुद का बता दें, ये तो बिल्कुल मुश्किल है, ये तो बिल्कुल। हालांकि तरतीब ये है कि बिल्कुल उल्टी तरतीब है, सबसे पहले तहज्जुद के बाद मांगना है, फिर इसके बाद आम नमाजों के बाद मांगना है, फिर इसके बाद कोई वजीफा पढ़ना है, यानी तरतीब के लिहाज से कोई वजीफा है, फिर उसके बाद कोई दम वगैरह है, आखिर में तावीज़ का नंबर आता है। तो लोगों ने तावीज़ को पहले नंबर दे दिया और तहज्जुद को आखिर नंबर दे दिया। उसकी वजह यह है कि इनका काम ये है कि हमें कुछ ना करना पड़े, बल्कि सारी चीज़ें मुफ्त ही मिल जाए और खुशामद के ज़रिए से हासिल हो जाए। यानी जिनके पास इस किस्म की चीज़ें होती हैं, तावीज़ें या कोई इस तरह, इनकी बड़ी खुशामद करेंगे, जी बड़े करामत वाला आदमी है, ये है वो है, हाँ जी, और बड़ी तारीफें करेंगे। लेकिन सही बात है, उनके दिल में उसकी नज़र उसके कदर नाई के बराबर भी नहीं होता, बस वो जुबानी जुबानी वाली बात होगी। उसकी वजह है कि वो भी उनके साथ वही मामला करते हैं ना, उजरत लेते हैं, जाहिर मतलब है कि वो उनकी तो प्रोफेशन है। तो ये, और आजकल लोगों को भी आसान लगा है, जैसे तावीज़ के लिए जराए अपने काम कराने लोगों के लिए आसान लगते हैं, तो इस तरह ये जो प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए ये भी आसान है कि अक्सर लोग इसके पीछे पड़ जाते हैं कि हम इस इलम को हासिल कर लें, और जो है ना मतलब ये है कि इसके ज़रिए से कमाएं और दुकानें सजाएं और कार्ड भी छाप लेते हैं, हाँ जी, इस किस्म की बातें करते हैं। तो मैं इसलिए अर्ज़ करता हूँ कि असल चीज़ जो है ना क्या है, वो यही है, वो यही है। इसके ज़रिए से इंसान ज़्यादा हासिल कर सकता है, और वो तहज्जुद की नमाज के बाद मांगना है। इरशाद फरमाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब्दुल्ला ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे हैं, फलां शख्स जैसा ना होना कि वो रात को उठता था फिर उसको तर्क कर दिया, बल्कि हमेशा पाबंदी से तहज्जुद पढ़ते रहो। ये मुत्तफ़िकुन अलैह हदीस शरीफ है। इन फलां की तरह ना हो जाना कि वो पहले तहज्जुद पढ़ता था, अब नहीं पढ़ता, तुम हमेशा के लिए पढ़ते रहो। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो किस्म के तरगीबें हैं। एक वो तरकीब है कि इसमें बता देते हैं कि जरूर करना है, इसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं, जिस पे मतलब जजर हो, जिस पे वो कहते हैं कि मतलब जो है ना वो जरूर करना है, ये सुन्नत मुअक्कदा है, इससे इनकार तो मलामत है इस पर। एक वो है जिसकी फजीलत बता दे, फजीलत के जरिए से उस पर जोर दे। चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी कमजोरियों का अंदाजा था, तो इस वजह से फजीलत बता देते लेकिन जोर नहीं देते, ताकि कोई मुजरम ना हो, हाँ जी, लेकिन फजीलत बताते अपने काम कर लेते हैं कि अगर कोई समझने वाला हो तो समझ जाए। अब मुझे बताओ फजीलत बताई ना, और कैसे बताई, और हदीस शरीफ भी सही है कि फलां की तरह ना हो जाना, चूंकि वो ताजुद पढ़ता था लेकिन अब नहीं पढ़ता, हाँ जी, हमेशा पाबंदी से ताजुद पढ़ते रहो। इरशाद फरमाया रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दीन आसान है और नहीं मुबालिग करता कोई शख्स दीन में, मगर इस पर दीन गालिब आता है, जो सब मुबालिग करते हो तक करे, बस तुम मियाने रवि अख्तियार करो, एतदाल पर रहो, खुश रहो और मदद चाहो सुबह शाम कुछ अखीर की रात में, यानी इन तीन अवकात में नफल इबादत कर लिया करो, इससे बहुत ज़्यादा नफ़ा होता है। ये ऐसे लोग के लिए है जो बहुत ज़्यादा शिद्दत करते हैं, यानी मुबालिगा करते हैं, और जो है ना मतलब ये है कि दुनिया के काम को बिल्कुल छोड़ देते हैं, उस मसले में जो है ना मतलब एतदाल से हट जाते हैं, फिर दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो चूंकि उस चीज़ के अपने दर्जात और सफाब है, मिसाल के तौर पर मैं कमाऊं और दूसरे लोगों को खिलाऊं, तो उसका भी तो अजर है ना, वो भी तो नवाफिल में, वो भी तो नवाफिल में। तो अगर कोई उसमें कोताही करने लगे तो फिर ये फरमाया कि ऐसा ना किया करो, लेकिन एतदाल का तरीका भी बता दिया, ये नहीं कि छोड़ दो बिल्कुल। आजकल जब लोग कोई नमाज वगैरह छोड़ना शुरू कर ले, कहते नहीं नहीं इतना तो नहीं करो ना, इतना तो नहीं। उनका ना करो का मतलब ये है कि बिल्कुल छोड़ दो। जरा पर भी अगर कोई लड़का कैसे अल्लाह वालों के पास बैठना शुरू कर ले तो घोरा मच जाता है, ओ ये क्या हो गया, ये तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। हाँ जी, वो वहाँ व्हीलिंग करते हैं, मतलब ये है कि जो मतलब मोटरसाइकिल पे, उसका इतना फिक्र नहीं होता जितना कि किसी अल्लाह वाले के पास जाने से उनको फिक्र होती है और परेशान हो जाता है। तो ऐसे ऐसे हालात में जो है ना, मतलब ये है कि जाहिर है फिर जिस वक्त पहुंच जाते हैं और मुश्किलात के शिकार हो जाते हैं तो फिर आते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, अब दुआ करो। उस वक्त भी आपके हाथ में नहीं देंगे, कहते दुआ करो। हाँ जी, मतलब दुआ से सिर्फ काम हो जाए। तो ये चीज़ जो है ना, मतलब ये है कि मसाइल हैं जिसकी वजह से परेशान है लोग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने वजीफे से सोता रह जाए या इससे कुछ रह जाए, फिर उसको फजर और जोहर के दरमियान किसी वक्त पढ़ ले तो उसके वास्ते उतना ही सवाब लिखा जाता है गोया कि उसने रात ही को पढ़ा। ये मुस्लिम शरीफ की रवायत है। मतलब ये है कि पूरा तो करो ना, रास्ता तो दे दिया ना, पूरा तो करो। इस वजह से अगर कोई किसी रात कोई रात को वजीफा करने वाला है तो अगर रह जाए किसी वजह से, अव्वल तो हम कहते हैं कि भाई रात को वजीफे, यानी वजीफे रात को ना छोड़ो, ये दिन के किसी वक्त कर लिया करो ताकि रह ही न जाए। लेकिन हम जब तबलीगी जमात में जाया करते थे तो हमें कुछ बातें बताई जाती, सिखाई जाती थी, तो उनमें ये भी वाली बात थी कि वो सारे दिन वो जो है ना, मतलब ये कि काम में लगकर फिर रात को बिस्तर के ऊपर बैठकर जो वजीफा करेगा वो 300 तीसरा कलमा 100 दफ़ा, तीसरा दुरूद शरीफ 100 दफ़ा, इस्तग़फ़ार 100 दफ़ा, ये जो जिक्र होता है जो हमारे हजरात बताते हैं, तो ये जो इस वक्त बिस्तर पर बैठ के करेगा तो कहते हैं उसने सोने की नीयत कर ली है। ये वजीफा नहीं करना चाहता, उसकी वजीफे की नीयत नहीं है। नीयत किस चीज़ की है? सोने की है। तो जाहिर फिर बिस्तर के ऊपर बैठा होगा तो माहौल तो सोने का है ना, अब तुम तो वजीफा खाक कर सकोगे। अब तो आप वजीफा जैसे आप शुरू कर लेंगे उस वक्त आपकी आंखें बंद होनी शुरू हो जाएगी और थोड़ी देर में आप ख्वाब खरगोश में पहुंच चुके होंगे। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, वजीफा करना चाहिए ऐसे वक्त में जो फ्रेश वक्त हो, क्योंकि जो काम वक्त अपना अपना लाख हो दिया है वो बेहतर होना चाहिए, जो जो वक्त आपने नफ्स को दिया वो बेहतर होना चाहिए। यहीं पर अगर आप डंडी मार देते तो फिर क्या हो सकता है। यहाँ पर एक आलिम है, उसने मुझे वाक्य बताया कि जब मैं इस इलाके में आ गया तो कहते हैं एक दफा मेरे पास दो किस्म का हलवा लाया गया। कहते मुझे ख़त्म पे बुलाया गया था तो दो किस्म का हलवा था, एक गुड़ का हलवा था और एक अच्छा जो चीनी का हलवा होता है, मतलब हालांकि अच्छा गुड़ का हलवा होता है लेकिन लोग उसको कम समझते थे उन दिनों। अब तो मेरे ख्याल में शायद अच्छा समझते होंगे, डॉक्टरों ने भी कुछ बातें कर ली हैं और कुछ गुड़ की कीमत भी बढ़ गई है, अब तो दिमाग ठिकाने आ गए। लेकिन उन दिनों गुड़ गरीब लोग चाय बनाते थे गुड़ में, हाँ जी, और मालदार लोग चीनी में चाय बनाते थे। तो खैर कहते गुड़ का भी हलवा था और चीनी का भी हलवा था। कहते हैं ये जो है ना, ये चीनी वाले लोग कहते ये हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का न्याज है और ये गुड़ वाला अल्लाह के नाम का है। तो कहते मुझे सख्त गुस्सा है, मैंने कहा ऐसे शिरक तो वो मुशरिकीन मक्का भी नहीं करते थे, ये तुम लोगों ने जो शुरू किया है, वो भी अल्लाह के नाम की चीज़ देते थे, वो तो बेहतर चीज़ देते थे। हाँ जी, ये क्या कर दिया तुम्हें, अल्लाह के नाम का बेहतर चीज़ नहीं, वो अल्लाह के नाम का कमीनी चीज़ और जो है ना, मतलब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के नाम का बेहतर चीज़। क्या शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह इस पर खुश होंगे? हाँ जी, तो ये आजकल के दौर में ये बातें हैं कि इन चीज़ों को जो है ना, मतलब लोग समझते नहीं है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमा दे। अल्लाह जल्ला शानु इरशाद फरमाते हैं, हक ताला ने जिक्र, हक ताला का जिक्र अपने रब का ख्वाह अपने दिल में आजिज़ी और खौफ के साथ, और ख्वाह पुकार से कम यानी मुतदिल आवाज़ के साथ, सुबह शाम के वक़्त, और गाफिलों में से मत हो। यही जो है ना, मतलब यह है कि यानी असल में आजिज़ी है और खौफ के साथ मतलब जो जिक्र है, तो चाहे मतलब मुतदिल आवाज़ के साथ हो, क्योंकि तेज़ आवाज़ से करने की ज़रूरत नहीं है, बस एतदाल के साथ, जितना आप एतदाल के साथ कर सकते हैं। अलबत्ता कि इसमें एक बात ज़रूरी है, हर चीज़ अपने मकसद की तरफ राजी होती है। आप अगर स्टडी करते हैं, मसलन किसी कॉलेज में आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपकी एक स्टडी बामकसद होगी और एक कुछ इजाफी स्टडी होगी। मसलन अगर आप अखबार पढ़ते हैं तो स्टडी तो वो भी है, लेकिन क्या उस स्टडी पर आप पास हो जाएंगे? वो स्टडी आपके पास होने के लिए नहीं, बस वो वैसे अपने तौर पर आप जनरल नॉलेज जो हासिल करते हैं तो है। स्टडी तो आपकी वो है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, जिसके बारे में सवाल पेपर में आएंगे। तो एक तो मतलब यह कि जो बामकसद है, और दूसरा जो है ना वो इजाफी है। तो ये मतलब यह कि जो लोग जिक्र करते हैं सवाब के लिए, उसमें मकसद क्या है? सवाब हासिल करना। और जो जिक्र करते हैं इलाज के लिए, तो उसमें मकसद क्या है? इलाज करना। बात समझ में आ रही ना? तो जो जिक्र सवाबी है, जिसमें सवाब मतलूब है, उसमें तो इस पर अमल होगा। और जो जिक्र इलाज ही है, तो चूंकि अलग चीज है, वो जरिया है, तो इसको जो है ना आप जरा थोड़ा सा देख लें कि वो इलाजी जिक्र में किस चीज के अंदर असर है इलाज का। अब उसमें हर शख्स का अपना अपना हाल होगा। जैसे बीमारी हर एक की जो होती है, तो उसका जो इलाज होता है वो हर शख्स की अपनी अपनी बीमारी के लिहाज से होता है ना। किसी को स्ट्रांग डोज देते हैं, किसी को माइल्ड डोज देते हैं, किसी को कौन सी दवाई देते हैं, किसी को कौन सी दवाई देते हैं, ये मुख्तलिफ। तो इसी तरीके से जिक्र भी किसी को क्या दिया जाता है, किसी को क्या दिया जाता है, और डोज भी हर एक का मुख्तलिफ होता है। अब जिसका जो भी डोज है उसके मुताबिक करना पड़ेगा, अगर वो इसका असर चाहता है। हाँ, और जो भी उसकी दवाई है उसके मुताबिक करना पड़ेगा, वही वही लेनी पड़ेगी, यानी वही इलाज इलाज जिक्र लेना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा। तो यहां पर जरब बात आ जाती है कि जरब जहर जो है, अगर वो इलाज के लिए हो तो उसमें हम सवाब नहीं समझेंगे, लेकिन उसमें इलाज समझेंगे। अगर हम सवाब नहीं समझते तो फिर तो कानून ही जुदा हो गया ना। समझ में आई ना बात? अगर इसमें आप सवाब नहीं समझ, फिर कानून ही जुदा हो गया, क्योंकि बिदत का ताल्लुक जो है वो नियत के साथ है। आप किसी पर भी बिदती का फतवा नहीं लगा सकते जब तक आप उस जब तक आपने उसकी नियत ना मालूम की हो कि उसको दीन समझता है या नहीं समझता। अगर वो दीन नहीं रिवाज समझता है तो बिदत नहीं होगा, वैसे गलत काम होगा, वैसे गलत काम होगा, लेकिन वो बिदत नहीं होगा। बिदत के मुशाबत होने की वजह से उसको रोका जाएगा, लेकिन उस पर बिदती का फतवा नहीं लगाएंगे, क्योंकि फतवा तो खतरनाक चीज है, मतलब वो तो फिर वापस भी आ जाती है हमारे ऊपर। तो ये तरीका है कि यहां पर जो जहर है और जरब है, अगर वो इलाज के लिए, तो इलाज के लिए तो चूंकि उसमें सवाब समझा ही नहीं जाता, तो दीन के जुमरे में नहीं आता, बल्कि दीन पर चलने के जरिए में आता है। अगर ऐसा ही हो, हर चीज नई चीज बिदत हो, तो फिर जो मस्जिद के जो मीनार हैं उसके साथ क्या करोगे? सारी मीनारों को हटाएंगे? आजकल कौन सी मस्जिद है जो मीनार के बगैर है? और आप सिस्टम के वक्त में मीनार थे। हाँ जी, तो अब क्या होगा फिर? तो ये जो चीज है, मतलब जो भी चीज, अब अगर उसको देखो, उसका जो मकसद है वो क्या है, मीनार का मकसद क्या है? मीनार का मकसद ये है, और ये होना चाहिए कि दूर से नजर आए कि मस्जिद यहां पर है, ये मीनार का मकसद है। मुझे इसका बहुत फायदा हुआ था एक दिन, और सही मानों में पता चला था कि इसका मतलब क्या है। वो ये हुआ कि मैं रुतलाल कमेटी के इजलास में जा रहा था ईद के चांद के देखने के लिए, यहाँ इस्लामाबाद में मीटिंग थी, और खुद मैं एतकाफ में था, और मुझे पता था कि चांद नजर आ जाएगा, लिहाजा मैंने इस नीयत से की थी कि मैं जब बाहर निकलूंगा तो उस वक्त बाहर निकलूंगा मस्जिद से जब अजान का वक्त हो जाएगा। हाँ जी, तो चांद जब नजर, तो मेरा एतकाफ तो पूरा हो चुका होगा। हाँ जी, तो मैं उस वक्त बाहर निकला, लेकिन नमाज भी पढ़नी थी, आपको पता है रमज़ान की नमाज मामूली नमाज तो नहीं होती, आज नमाज भी जमात के साथ पढ़नी थी। तो मैं रास्ता भर चेक करता रहा कि मीनार नजर आ जाए कि मस्जिद किधर है। तो वो जो मुसलसल में मीनारों की तलाश में था, उस वक्त मुझे मीनार की अफादियत का पता चला कि क्या है। तो इधर ये इस फैसल रोड, फैसल मस्जिद की तरफ जो रोड जाता है ना, यहाँ बाएं तरफ मुझे कुछ मीनार नजर आए, तो गाड़ी मैंने उस तरफ मोड़वा दी और फिर वहाँ पहुँच गया, हमने नमाज पढ़ी। खैर, वो खुदा का बंदा भी ऐसे अजीब आदमी था जो नमाज पढ़ाने वाला था, कि मेरे ख्याल में सुभान रब्बिल अज़ीम तो शायद 20 दफ़ा पढ़ सकते होंगे हम उसमें, इन रुकू में। ऐसे अजीब लोगों की बस अजीब हैरत की बात है, पता नहीं ये दीन को क्यों नहीं सीखते, नमाज़ें पढ़ाते दीन को नहीं सीखते। आप सल्लम की नमाज बड़ी हल्की नमाज होती थी जुमात की, आप सल्लम की नमाज जुमात की हल्की होती थी, अपनी इनफरादी नमाज बड़ी लंबी होती थी। ये चीज पता नहीं इन लोगों को किसी ने समझाई नहीं, ना ये समझना चाहते हैं। इन लोगों के पीछे जिम्मेदारी होती है, एक आदमी ने फ्लाइट पकड़नी है और जुमात की नमाज मिस नहीं करना चाहता, आपने 20 दफा जुबान रबेलिज्म वाली नमाज पढ़ ली। बल्कि मैंने एक दफा एक मस्जिद में ये किया कि मैंने एक मौलवी साहब की जुमात की नमाज को हिसाब किया कितने मिनट में पढ़ी, और फिर उसके चार रखा सुनत है कितने, तो वो उसके आधे टाइम से भी पहले। भाई, जो इनफरादी नमाज लंबी करनी थी वो छोटी, और जो इज्तिमाई नमाज जो थी वो जो लंबी है, क्या उल्टी बांधक है, कैसे अजीब हालत है। आजकल इन चीज़ों पर रोना आ जाता है, ये हमारे मौलवियों का हाल है, और तो छोड़े। हाँ जी, तो खैर उसने देर तो बहुत करा दी, लेकिन मलहम मैं पहुंच गया वक़्त पे, पहुंच गया। और जैसे मैं पहुंच गया तो मुफ्ती साहब ने कहा माशाल्लाह शबीर का खलील साहब भी आ गए। तो उस वक्त वह ऐलान कर चुके, चांद तो नज़र आ गया था। आज तो मतलब मेरा ये है कि मीनारों का भी ये बात है। तो ये जो जहर है, जहर ये ज़र्ब जहर, ये सवाब के लिए नहीं है, ये इलाज के लिए है। जब सवाब के लिए, उस पर सवाब वाले कानून लागू ही नहीं होता, तो उस पर ये कुरान पाक की आयत हम नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता जहर के अपने उसूल हैं। मसलन आप दुनिया के काम के लिए कोई ऐसा काम अलग करते जिससे दीन ने रोका हो, तो आप कर सकते हैं। दुनिया की नीयत से अगर आप कर रहे हैं और उससे दीन का दीन ने मना किया, तो आप तो नहीं कर सकते। लिहाजा ऐसा जहर जिससे किसी की नींद खुल जाए अगर सोने का वक्त, जायज नहीं होगा। हत्ता कि कुरान आप पढ़ते हैं, अगर आपके कुरान पढ़ने से किसी की नींद खराब होती है, किसी बीमार आदमी को तकलीफ होती है, तो उसको मना करना पड़ेगा। क्यों? वजह यह कि आपको किसी और के आराम में मुखल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे आप कितना ही ऊंचा काम क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि हर चीज का अपना अपना उसूल है। वो पाकिस्तान जब बन गया तो वो एक आदमी इस तरह, वो नहीं, वो तो गोपिया घुमा रहा था, तो एक आदमी की नाक को लग गए। उसने कहा कि क्यों? उसने कहा आज़ादी है। उसने कहा आपकी आज़ादी मेरे नाक तक है, मेरे नाक जहाँ से शुरू होती है आपकी आज़ादी ख़त्म हो जाती है। तो बात यही है कि भाई तुम किसी और को तो तकलीफ नहीं दे सकते हो ना, अपने लिए तो बेशक तुम्हें फायदा हो, लेकिन तुम किसी और को तो तकलीफ नहीं दे सकते हो, औरों को क्यों तकलीफ दे दो। तो ये जो बात मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये इस वजह से कि दोनों तरफ अफरा तफरी थे, और तो छोड़ें, मुझे अपने गले का शौक है कि मैं कुछ खुश आवाजी के साथ कुछ पढ़ूं, तो रात को अजान से भी पहले, आधा घंटा पहले मैंने नाते शुरू कर ली, और ये क्या, ये क्या, वो क्या, इसकी इजाजत होगी भाई? आप तो बात, और ये जब देखिए ईद मिलाद नबी पर जो शोर होता है, इस पर कोई नमाज नहीं पढ़ सकता, नमाज नहीं पढ़ सकता कोई मस्जिद के अंदर, इतना शोर होता है। बल्कि आप तजर्बा कर लें उस दिन जाएं, अब तो चूंकि चीजें बहुत आसान हो गई हैं, एक ही बाजार में तकरीबन 20-25 स्टॉल लगे होते हैं, और हर स्टॉल में उन लोगों ने मुकाबले, वो क्या, वो इसका एहतमाम किया होता है, मुकाबले किरत और मुकाबले नात, उसका एहतमाम किया होता है, और उन्हें रखे होते हैं, वो कप भी रखे होते हैं, और बच्चों की तो मजे हो जाते हैं। अच्छा, अब बच्चे आते हैं, एक स्टॉल पर भी पढ़ते हैं, दूसरे स्टॉल पर भी पढ़ लेते हैं, वहां से भी इनाम हासिल कर लेते हैं, तो अब क्या है, हर वक्त एक ही वक्त में सारे स्टालों से आवाज जा रही है, और सब लाउड स्पीकर पर, और किसी की भी समझ नहीं आ रही होती, किसी की भी समझ नहीं आ रही होती, वो दिमाग पर इतना बोझ होता है कि वहां कड़ा होना महाल होता है। अब क्या कुरान से और नात से लोग को मुतनफर करना है? हाँ जी, कुरान तो ऐसा पढ़ो जिससे लोगों को शौक हो जाए, रहबत हो जाए, कुरान को ऐसा पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या है इसका मतलब, क्या है नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, ऐसी तरीके से कि जिससे लोगों को तकलीफ हो जाए, तो इसमें हम क्या मैसेज दे रहे हैं, और समझने से भी नहीं समझते, लड़ाई करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो ये जहालत है। हाँ जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जिक्र जहर है, उसमें भी इतना अफरात नहीं होना चाहिए कि किसी को तकलीफ हो, किसी को नुकसान हो, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हदीस शरीफ में आया कि अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। हाँ जी, रोज महशर की जहां गदाज बुअत अवली पुरसशी नमाज बुअत, रोज महशर के जो सबसे मुश्किल मरहला है वो ये है कि इसमें पहले पूछ जो है नमाज के बारे में होगी। हाँ जी, पहले पूछ नमाज के बारे में होगी। हजरत अली करमल्लाहु वजहू जब नमाज पढ़ते थे तो चेहरा जर्द हो जाता था, तो लोगों ने कहा हजरत क्या हो गया था, पर मैं अल्लाह के सामने खड़ा होना है, अल्लाह के सामने खड़ा होना है। भाई, अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करना कोई आसान बात तो नहीं है। तो जब हम नमाज में खड़े हो जाते हैं तो जाहिर है हम गोया कि जिस कंडीशन में होते हैं वो कंडीशन सामने आ जाती है। तो एक तो ये कि ये कयामत के हिसाब का जिक्र है, और कब्र में सबसे पेशतर पेशाब के बारे में सवाल किया जाएगा कि इससे बचाव किया था या नहीं। इस मसले में तो आजकल बहुत ही ज्यादा तफरीत है। थोड़े से बात मैं अर्ज करूंगा, मर्द भी बैठे हुए हैं, इनके फायदे की बात है, औरतों के फायदे की बात नहीं है, लेकिन इनके लिए मैं बात करता हूं। कुरान पाक में कुबा के जो सहाबा थे उनकी तारीफ आई है, तारीफ आई है कि ये लोग पाक लोग हैं, पाक लोग अल्लाह पाक ने फरमाया, और अल्लाह पाक पाक लोगों को पसंद करते हैं, वल्लाह युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। ये आयत इनके बारे में आया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि आप लोग क्या अमल करते हैं अगर अल्लाह पाक ने आपकी तारीफ फरमाई। तो उन्होंने कहा हम जिस वक्त पेशाब करते हैं तो पहले डीले से इस्तिंजा करके खुश करते हैं, फिर इसके बाद पानी से, डीले से। अब उस वक्त एक मुस्तहब अमर था, लेकिन जब बीमारी हो जाती है और कतरे नहीं रुकते, उस वक्त खड़े होकर वो जो है ना वो करना, वो जो है ना वो खुश करना, ये लाजिम हो जाता है, क्योंकि अगर उसके बाद कतरे आ गए तो क्या होगा, वो तो आपके वजू ही खत्म हो गया, ने वो नापाक हो गए, कपड़े नापाक हो गए। पहले वक्तों में पंजाब में चाय नहीं पी जाती थी, केपीके में चाय पी जाती थी बहुत ज्यादा। हम तबलीग में जब गए थे शकरगढ़ के करीब तकरीबन, तो मैं तो चाय का आदी था, तो मैंने अमीर साहब से इजाज़त ली चाय, क्योंकि चाय नहीं पकती थी जमात में, चाय नहीं पकती थी, तो मैं इजाज़त ली कि मैं बाहर से चाय पी लूँ। कहते हाँ चलो पी लो। तो मैं बाहर गया तो बाहर चाय का कोई दुकान नहीं था। हाँ जी, तो मैंने चाय का पूछा कि जी किधर से मिलेगा, तो उनने मुझे एक दूध बेचने वाले का पता बताया कि उनके पास जाओ, उन वहाँ होता है। तो मैं उनके पास चले गया, मैंने कहा चाय मिलेगी? कहते कितना पाओ? मैं हैरान हो गई, भाई चाय का पाव के साथ क्या डालोगे, वो तो कप के साथ होता है। तो मैंने कहा कितने पाव का जवाब, तो कम से कम एक पाव है ना, तो मैंने कहा एक पाव। तो उसने एक पाव दूध डाल लिया और उसमें पत्ती डाल दी, वो दूध पत्ती थी। तो इस तरीके से मैंने चाय पी ली। तो वहां उस वक्त पंजाब में चाय का रिवाज ही नहीं था, गालिबन शायद ये केपीके में था और कराची में था। हाँ जी, बाकी जगहों पे नहीं था। मसाने का ताल्लुक चाय के साथ है। जैसे जैसे चाय पी जाएगी तो मसाने कमजोर होते जाएंगे और वही मसला शुरू हो जाता है जिसके लिए लाजम हो जाता है। तो अब चूंकि पंजाब में भी मसला है, लेकिन पंजाब वाले मानते नहीं, वो सिर्फ पानी से इस्तिंजा करना लाजिम समझते हैं, पता नहीं इनके ऊपर कोई और लाजिम उतरी होगी। हाँ जी, तो इस किस्म के मसाइल हो जाते हैं। हाँ जी, इन चीज़ों को जानना चाहिए, मसाइल को मालूम करना चाहिए। हर चीज़ का अपना अपना तरीका होता है, ये फ़र्ज़ैन उलमात है, मतलब इन चीज़ों के बारे में पता करना कि आया मेरी कंडीशन उस तक पहुंच गई या नहीं पहुंची। हाँ जी, तो पेशाब के कतरों के बारे में पहले पूछा जाएगा। ये मुझे, मैंने ये बात इसलिए की कि इतनी खतरनाक बात है कि कब्र में सवाल सबसे पहले इसके बारे में होगा। बस अगर वो नमाज ठीक रही तो कामयाब और बामुराद हो, इसमें कमी रहेगी तो नाकाम और बेमुराद रहेगा, और अगर इसके फर्जों में कुछ कमी रह जाएगी तो हक ताला शान इरशाद फरमा रहे। बल्कि मैं इसमें एक बात भी ऐड कर लूँ कि मिसाल के तौर पर आपकी वो कंडीशन नहीं है, यानी आपके वो कंडी, लेकिन अगर आप फिर भी करेंगे तो खसारे में तो नहीं रहेंगे ना, कुबा वालों में हो जाएंगे ना। कुबा वालों की तारीफ तो कुरान में आई है ना, तो कम से कम उसमें हो जाएंगे, तो एहतियात भी हो जाएगी और तारीफ भी हो जाएगी, सुभान अल्लाह, उन लोगों में शामिल हो जाओगे। तो आजकल मैं कहता हूँ कि वही ये आयत मेरे ख्याल में इस पर अमल बहुत ज़्यादा मुनासिब है। अच्छा, बस अगर वो नहीं ठीक रही तो कामयाब और बामुराद हो गया, और इसमें कमी रह गई तो नाकाम और बेमुराद रहेगा, और इसके फ़र्ज़ों में कुछ कमी रह जाएगी तो हक निशान इरशाद फरमा रहे कि देखो क्या मेरे बंदे के वास्ते कोई नफल है, बस अगर नफल हुए तो इनके साथ वो कमी पूरी की जाएगी। अब नफल काम आ गए नहीं है? हाँ जी, जो फर्जों में रह गई हो, फिर इस तरह इसके सब आमाल का हिसाब किया कि नफल से फर्जों की कमी की को जकात और रोजा वगैरह में भी पूरा किया जाएगा। सुभान अल्लाह, इस वजह से अपने साथ नवाफिल का अच्छा खासा स्टोरेज रखना जरूरी है। हाँ जी, क्योंकि अगर मसला दरमियान में कुछ हो गया तो इंशाल्लाह सप्लीमेंट्री तौर पर ये चीज़ें मौजूद रहेंगी, वरना फिर ये है कि उधर तो कोई सूरत हाल नहीं होगी ना उसको ठीक करने का, कोई आप हमारे पास कोई सोर्स ही नहीं है। और वो इतना खतरनाक दिन है कि कुरान पाक में इसकी जिसको कहते हैं ना वो मंजर कशियां जो की गई है, आदमी का कलेजा मुंह को आ जाता है अगर समझ रहा हो। योम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबती व बनीही, उस दिन अपने भाई भाई से भाग रहा होगा और माँ और बाप। हाँ जी, और जोज या जोजा। हाँ जी, ये भाग रहे होंगे एक दूसरे, कहीं मुझसे कुछ मांग न ले, हर एक परेशान होगा, हर एक परेशान होगा। तो ऐसी हालत में जबकि आपको कोई भी सहारा नहीं मिलेगा, तो तो अपने लिए कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, कुछ पहले से बंदोबस्त करना पड़ेगा। और पहले बंदोबस्त यही है कि अव्वल तो परफेक्ट अमाल करने चाहिए, फराइज में जरा भर भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए, फर्ज अमाल में, और इस तरीके से सुन्नत अमाल में, वाजिब में कुछ भी कमी नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस खदशे के बुनियाद पर कि कहीं मेरे मैं किसी चीज़ को कामिल समझ रहा हूँ, कामिल ना हो तो फिर क्या होगा, दोबारा आने के चांस है नहीं, तो अपने साथ नफलों का भी एक ज़खीरा रखना चाहिए, नफलों का भी एक ज़खीरा रखना चाहिए। मैं अक्सर रमज़ान शरीफ में ये इस पर बयान करता रहता हूँ कि रमज़ान शरीफ में अल्लाह पाक बहुत खोल देते हैं सारी चीज़ों को, तो उसमें फिर क्या होता है, नफलों का जवाब, नफलों का जो सवाब है फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है, रमज़ान में नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। हाँ जी, और फ़र्ज़ों का जवाब सवाब जो है ना 25 गुना, मतलब जो है ना वो बढ़ जाता है, 70 गुना बढ़ जाता है, 70 गुना बढ़ जाता है जुमात का 25 गुना। तो अब अगर जुमात के साथ फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं तो 25 ज़रबे 70 और जुम्मे को मजीद 70 से मल्टीप्लाई, तो मतलब माशाल्लाह बहुत बड़ा, यानी वो अल्लाह ताला ने उसके लिए दर खोला होता है। तो रमज़ान शरीफ में तो बहुत ज़्यादा इंसान को इस्तेमाल करना चाहिए टाइम को, अलबत्ता आम दिनों में भी तहज्जुद तो कम अज़ कम पढ़ना चाहिए ना, तहज्जुद पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये नमाज जो है ये अलबेली है, नमाज अलबेली है ये तहज्जुद की नमाज, तो तहज्जुद की नमाज कम अज़ कम पढ़ना चाहिए। फिर इसके बाद इशराक की नमाज है, चाश्त की नमाज है, अवाबीन की नमाज है। अवाबीन की नमाज के बारे में आता है कि जो ये 6 रकात पढ़ेगा बाकायदगी के साथ उनको 12 साल नफली अमल नमाज का सवाब मिलेगा, 12 साल, जो इसमें दरमियान में बात ना करे, ये अवाबीन का है। और इशराक का सुभान अल्लाह ये तो मकबूल उम्रे के बराबर बताते हैं, हाँ जी, यानी उसके जो है ना वो सवाब जो बताते हैं। और माशाल्लाह ये 2 रकात जो हैं, पहले 2 रकात का तो मकबूल उम्र का है, और दूसरे 2 रकात जो हैं ये सलात हाजत की तरह है कि आपके सारे दिन के कामों में अल्लाह ताला की मदद होगी। मैं एक दिन इंटरव्यू देने जा रहा था तो किसी ने मुझे कहा सलात हाजत पढ़ी है, मैंने कहा आप लोगों से सुना था कि जो इशराक की नमाज पढ़ते हैं 4 रकात तो 2 रकात जो है ना वो सलात हाजत, कहते बस ठीक है ठीक है ठीक है बस ठीक है। तो मतलब मेरा ये है कि इन पर यकीन चाहिए ना, बुनियादी मतलब सिर्फ सुनने की बातें तो नहीं है ना, इस पर यकीन चाहिए, आदमी इस तरह मान ले कि हाँ इस तरह ही है, फिर माशाल्लाह इसका असर भी होता है। तो बहरहाल ये है कि इशराक की नमाज है, चाश्त की नमाज है, चाश्त की नमाज तो माशाल्लाह ये जन्नत में महल बनाने वाली बात है, हाँ जी। और इस तरीके से जो है ना वो सुन्नत ज़वाल है, ये तो तकरीबन हमारे लिए गैर मारूफ हो गया है, हम तो इसको हालांकि कहते मुजरसान फरमाते कि आपसे हमने कभी नमाज नहीं छोड़ी सुन्नत ज़वाल, हमारे लिए बिल्कुल गैर मारूफ हो गया है कि ये पता नहीं ये भी पड़ जाती है, हाँ जी। तो इन चीज़ों को सीखना चाहिए, एक कमाने की चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में इस तरह बार दफ़ा ये आते हैं ना इधर वोकेशनल इंस्टीट्यूट, जिसमें मतलब यह है कि आप तरीके सीख लें जिस पे आपको 8 से 10 हज़ार रुपये माहाना का घर बैठे कमाई का इंतज़ाम हो जाएगा, आप सीख लेंगी इस तरह, मतलब वो लिखा होता है। तो 8 से 10 हज़ार वाले रुपए वाली बात तो समझ में आती है, लेकिन इन चीज़ों को सीखने की बात नहीं आती कि इन चीज़ों से क्या मिलेगा, इससे आपको क्या मिलेगा। तो ये वाली बात है कि आप लोग इन चीज़ों को भी सीखें ताकि आप ये फ़ज़ाइल जो होते हैं ना, फ़ज़ाइल ये इंजन होते हैं अमाल के, जिसके ज़रिए से इंसान अमाल पर आते हैं। मसाइल ये तो बहुत लाजम है, क्योंकि मसाइल अगर आपने नहीं सीखे तो उसका मतलब है वो काम कर ही नहीं सकते, लेकिन फ़ज़ाइल वो बग़ैर उसके इंसान को अमल का शौक नहीं होता। बल्कि ये तो ऐसी अजीब चीज़ है कि अगर आप सिर्फ एक ही किस्म की चीज़ों के फ़ज़ाइल सिखाएंगे ना तो इसमें इतना असर है, जैसे एडवर्टाइजमेंट में असर होता है ना, इतना असर है इसमें कि बाकी फ़ज़ाइल आपसे छुप जाएंगे जो आपने नहीं सीखे। नतीजे एक एन मुमकिन है कि आप सिर्फ उसी को फिर बयान करते रहें और बाकियों से आप सर्फ नज़र कर लें जो गलत होगा। हाँ जी, इसलिए फजाइल बैलेंस के साथ बयान करने चाहिए, यानी थोड़ा थोड़ा सबको बयान करना चाहिए ताकि जो है ना ये दरमियान में एक्सट्रीमिज्म ना आए। एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा खतरनाक होता है, वो लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। ये पागल लोग होते हैं ना, पागल लोग, ये क्यों पागल होते हैं, इसका क्या मतलब होता है? पागल लोगों के दिमाग में कोई भी चीज़ आ जाए ना तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ वही होती है, वो किसी और चीज़ की परवाह नहीं करते। तो बात उनकी सही होती है, नहीं कि गलत होती है, लेकिन वो पागलपन यही होता है कि वो बाकी चीज़ों को छोड़ देते हैं, वो कहते हैं बस सिर्फ यही है। तो अगर सिर्फ एक तरफ के फजाइल सुनकर सिर्फ एक चीज़ ही की बात करें और बाकी चीज़ों को भूल जाएं और उनके बारे में जो है ना मतलब मुतशद्दिद रवैया अख्तियार कर ले तो पागलपन है, ये पागलपन है। लिहाजा पागलपन से बचना चाहिए, लेकिन ये है कि इस तरीके से ये जो फजाइल हैं सीखने चाहिए। सबके जिहाद के भी फजाइल हैं माशाल्लाह, सियासत के भी फजाइल हैं, दरस तदरीस के भी फजाइल हैं, लोगों की खिदमत के भी फजाइल हैं, लोगों के काम करने के भी फजाइल हैं, एतिकाफ के भी फजाइल हैं, इस तरह और भी। मुझसे यहीं पर एक बुज़ुर्ग ने पूछा कि रमज़ान शरीफ में पूछा, एतिकाफ के दिन आ रहे हैं तो मुझे एतिकाफ करना चाहिए या अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहिए, ये सवाल किया मुझसे। और ऐसे सादा आदमी थे, मैंने कहा वो करो जो इन दिनों में आपसे शर्म नहीं किया हो। कहते भाई जवाब तो फिर मिल गया जवाब तो फिर मिल गया, आपसे शर्म इतिकाफ कर देते ना इतिकाफ के दिनों में, तो कहते भाई जवाब फिर मुझे मिल गया। तो इस तरह जब सबके फजाइल आप बताएंगे ना तो हर चीज़ का जो वक़्त होगा उस पर आप वो कर लेंगे, और अगर नहीं कर सकते तो कम अज़ कम दिल में कलक तो होगा ना कि मैं ये नहीं कर रहा हूँ। नतीजा क्या होगा, एक या दो काम तो आप कर रहे होंगे और बाकी का शौक होगा। तो जब शौक होगा तो उसके दो फायदे होंगे, एक तो मतलब ये है कि आप जो लोग काम कर रहे हैं उन पे आपकी हसरत भरी निगाह होगी कि अफसोस मैं ये नहीं कर सका, तो अपने आप को कम समझ रहे होंगे और उनके लिए दुआएं भी कर रहे होंगे क्योंकि उसको अपना काम समझ रहे होंगे। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप अपने आप को बड़ा समझ रहे होंगे कि मैं ये काम कर रहा हूं और बाकी लोग ये काम नहीं कर रहे, हालांकि दूसरे बहुत अहम काम कर रहे होंगे। जैसे बाद लोग आजकल उलमा और मशाइख पर हसरत की निगाह डालते हैं कि तो बेचारों पर दीन नहीं खुला, तो उसकी वजह यह है कि उनको उनकी चीज़ों के फजाइल मालूम नहीं है। अगर वो फजाइल मालूम होते तो इस किस्म की बात क्यों करते? तो इस वजह से बैलेंस फजाइल का साथ लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब फरमाए, ये समझें। और आप ससलम ने फरमाया अल्लाह जल्ल शानो जिसके साथ खैर का मामला फरमाना चाहे, खैर का मामला फरमाना चाहते हैं उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं। इसमें दो बातें बहुत ज़रूरी है, खैर का मामला और समझ। हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर पालनपुर साहब रहमतुल्लाह से जब मेरे इवेंट में मिला तो हज़रत ने मुझे जो दुआ दी वो ये दुआ क्या दी थी, अल्लाह ताला आपके साथ खैर का मामला फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल बड़ा खुश हो गया। अगर वैसे किसी और से कहते तो पता कहते हजरत ने मुझे टाल दिया हालांकि ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि अल्लाह ताला किसी के साथ खैर का मामला फरमाए। तो ये खैर का मामले के लिए फरमाए कि अल्लाह पाक दीन की समझ अता फरमाए। तो मैं समझता हूँ कि उस मामले में दुआ एक हुई, लेकिन चीज़ें दो है, दो की दुआ हुई ना, क्योंकि खैर का मामले जिसके साथ फरमाते तो उसका नतीजा क्या होता है, उसको अल्लाह ताला दीन की समझ अता फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको दीन की समझ अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबी, اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا واسرنا ولا توسر علينا واردنا واردنا اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين رب ارحمهم كما ربيانا صغيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم اللهم نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر استعاذ من ربك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك سبحان ربك